वो नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज हमारे साथ मोबाइल वाणी के मंच पर जलवायु परिवर्तन इस विषय पर बातचीत करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बालाघाट से जिला समन्वयक कुलदीप ठाकुर जी। नमस्कार सर।
नमस्कार दिनकर जी।
सर जी, हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है।
जी पात्रकर जी, देखिए जलवायु परिवर्तन को लेकर मेरा ये मानना है कि एक ऐसा दीर्घकालिक परिवर्तन जो काफी समय के बाद इस प्रकृति में देखने को मिलता है। हम जैसे अगर आपसे एक सदी पहले की बात करें तो उस समय जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं थी, कितनी बारिश होना है, कितनी गर्मी पड़ना है, कितनी ठंड पड़ना है, उसमें धीरे में धीरे समय के साथ अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं।
सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन से खेती बाड़ी और आम जन जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है।
देखिए, चूंकि प्रकृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है तो वो हमारे जीवन के किसी भी पहलू से अलग नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपने कहा कि खेती बाड़ी या हमारे सामान्य जीवन में उसका क्या असर पड़ता है, तो मैं अगर बात करूं कि आज से जैसे 45 साल पहले जितनी बारिश हुआ करती थी, अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो लगभग लगभग औसत बारिश आज भी उतनी होती है। लेकिन परिवर्तन क्या आया कि पहले अगर 40 इंच 45 इंच बारिश होने में 4 महीने लगते थे तो अब वही बारिश हो सकता है 2 महीने में हो जाती हो। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही कहीं ना कहीं हो रहा है कि हमारी बारिश तो उतनी ही हो रही है लेकिन उसका समय कम हो गया। जो 4 महीने में होना था वो 2 महीने में हो रही। उसके दुष्प्रभाव ये हो रहे हैं कि कहीं बाढ़ आ रही है, किसी क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है ना, तो कहीं जहाँ बाढ़ नहीं आती तो वहां बाढ़ आ रही है, तो हमारी खेती बाड़ी प्रभावित हो रही, कहीं खेती बाड़ी डूब रही है, या फिर सूखा पड़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, और ये सारी चीजें हमारे जीवन में और खेती बाड़ी में सीधे प्रभाव डालती हैं।
सर जी, जैसा कि आप शासकीय विभाग से जुड़े हो और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में महत्वपूर्ण पद पर बालाघाट में आसीन हो जिला समन्वयक जैसे पद पर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शासन की ऐसी कौन कौन सी योजना है जो जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रही है।
देखिए दिनकर जी, जलवायु परिवर्तन को लेके जहाँ तक मैं हमारे देश की बात करूँ, भारत की, तो हम लोग बहुत ही व्यवस्थित रूप से और एक सही दिशा में इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के विषय में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास है, देश का प्रयास है, ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं कि उसमें कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन भी जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है कि आज हमारा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उसमें दूसरी चीज है कि हम ऊर्जा के नए स्रोतों को तलाश रहे हैं और उनके तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम पारंपरिक जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं उनका हम कैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली ऊर्जा में कैसे उनको बदल सकें, जिसका एक बड़ा उदाहरण जैसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शायद मध्य प्रदेश में ही लगाया गया है, रीवा के पास से ही लगा हुआ है। तो अब हम सौर ऊर्जा को कैसे हमारी दैनिक ऊर्जा में बदल दें, कैसे प्राकृतिक संसाधनों से, ताकि हम जो हमारी पारंपरिक स्रोत हैं उनका सही तरीके से उपयोग कर सकें और उससे हमारी कार्बन उत्सर्जन का जो ग्राफ है वो नीचे आएगा, तो स्वाभाविक है कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो हमारा वैश्विक तापमान जो है या ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे हम बचेंगे, हमारी ओजोन परत जो है वो सुरक्षित रहेगी। ऐसी बहुत सारी काम अभी भारत में चल रहे हैं। एक तो जैसे हरित अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि आजकल ऐसे विषयों पर काम कर रहा है कि कहीं भी अगर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली कोई गतिविधि होती है तो उस पर अगर कोई व्यक्ति उस पर उसकी शिकायत करता है या उस विषय को उस मंच पर रखता है तो तुरंत उस पर सुनवाई होती है और उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। जैसे बहुत सारे काम हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ज्यादा रुझान है, सरकार प्रयास कर रही है कि अगले 4-5 सालों में अधिक से अधिक वाहन जो है हमारे इलेक्ट्रिकल हो जाए ताकि हम डीजल पेट्रोल पर हमारी आत्मनिर्भरता कम हो जाए और डीजल पेट्रोल से जो कार्बन का उत्सर्जन होगा वो भी स्वाभाविक है कम होगा अगर हम उसका उपयोग कम करेंगे तो। ऐसे बहुत सारे प्रयास जो है शासकीय स्तर पर भी चल रहे हैं, साथ में एक बहुत बड़ा अभियान वृक्षारोपण
है,
जितने अधिक से अधिक वृक्ष हम लगाएंगे, पौधे हम लगाएंगे, उतना कहीं शायद हम इस प्रकृति को अपने जीवन के अनुकूल रख पाएंगे और बना पाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि हम कह सकते हैं हमारे देश में इस विषय में बहुत ही बेहतर तरीके से काम हो रहा है।
सर जी, जैसा कि आप एक जन अभियान परिषद के माध्यम से सामाजिक सरोकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन में जन भागीदारी कितनी सुनिश्चित हो रही है, और जैसा कि आपने वृक्षारोपण की बात की, वृक्षारोपण के साथ साथ और अन्य ऐसे कौन से प्रयास है जो जन अभियान परिषद के माध्यम से जनता को साथ में लेकर किए जा रहे
हैं। पात्रगढ़ जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जन भागीदारी, क्योंकि देखिए जैसे इसके पहले का प्रश्न था कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है, उनकी कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो ठीक है, योजना बनाना सरकार का काम है, सरकार उस विषय में बहुत बढ़िया काम भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है, और उसको उसके क्रियान्वयन में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन किसी भी ऐसे काम जो कि हम सबके लिए या जीवन के लिए जरूरी है, उसमें जब तक शासन और समाज दोनों की भागीदारी सुनिश्चित ना हो, तब तक शायद वो परिणाम नहीं आते जैसा हम चाहते हैं। तो शासन ने तो योजना बना दी, शासन ने योजना बनाई कि भाई हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन अगर समाज की भागीदारी उसमें नहीं होगी तो शायद हम वृक्षारोपण तो कर देंगे लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, या हम पौधारोपण कर देंगे लेकिन उन्हें वृक्ष बनने की जो प्रक्रिया है उस तक शायद हम ना बचा पाए। तो समाज की भागीदारी वो बहुत जरूरी है। और जहां तक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की बात है, तो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का मुख्य ध्येय ही यही है कि हम विकास के कामों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करें। और इस दिशा में हम लोग, जैसे मध्य प्रदेश शासन की मैं बात करूं तो एक अंकुर अभियान पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। उस अभियान के तहत शासन भी चाहता है कि समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो, कोई भी व्यक्ति पौधारोपण करे और एक अंकुर ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी शासन तक पहुंचाए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके माध्यम से एक सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। इसके साथ ही सिर्फ वृक्षारोपण अकेले से बात नहीं बनेगी, मेरा ऐसा मानना है कि और भी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उनका सभी का एक संतुलन भी आवश्यक है। जैसे आज अगर जल की बात करें तो जल का एक सही तरीके से उसका दोहन किया जाए, ना कि शोषण हो। आज पिछले विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बहुत अधिक हम जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका दोहन भी हमने बहुत अधिक किया है। तो अब उस व्यवस्था को भी ठीक करेगी, कैसे हम धरती से हम जल तो निकाल रहे हैं लेकिन वापस जल को धरती में डालने के लिए हमने क्या किया। तो अब शासन तो इस विषय में पहल कर ही रहा है, लेकिन समाज को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम जल निकालने के साथ साथ धरती में वापस जल डालने के लिए हमारी उसमें क्या भूमिका हो सकती है। छोटे छोटे प्रयास समाज कर सकता है कि वो अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी छोटी छोटी इकाइयां है कि वो अपने छत के पानी को कैसे अपने जमीन में उतारे। हमारे जो किचन है या हमारे जो दैनिक उपयोग के बाद जो पानी बचता है उसको क्या हम सोखता गड्ढा बना के क्या वापस जमीन में डाल सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो प्रयास हैं उसमें जब तक समाज की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम शायद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जन अभियान परिषद के माध्यम से छोटे छोटे गाँव में ग्राम विकास प्रस्फुटन समूह बनाए गए
जी,
और नवांकुर संस्थाएं बनाई गई। ग्राम विकास प्रस्फुटन समूह और नवांकुर संस्थाएं जलवायु परिवर्तन में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती
है? ऐसा है, देखिए कि ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति हमारी उन समाज सेवियों की इकाई है जो कि कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए मध्य प्रदेश के, मुझे नहीं लगता कि वहां शायद जन अभियान परिषद से जुड़ा कोई बंदा ना हो या प्रस्फुटन समिति या हमारे छात्र ना हो, है ना। आप किसी भी उसमें जाएंगे तो वो आपको सहजता से देखने को मिल भी जाएंगे और उनके काम भी देखेंगे कि कहीं अगर वो समाज को जागृत करने के लिए दीवार लेखन का काम कर रहे हैं तो कहीं वो स्वयं समाज को जागृत करके अपने स्थानीय नदी नालों में जल संरक्षण को लेकर बोरी बंधन जैसी इकाइयां बना रहे हैं। तो वही हमारे परिषद से जुड़े जो लोग हैं वो वृक्षारोपण का जब समय आता है, बारिश का जब समय आता है, तो लोगों को जागरूक करते हैं और वृक्षारोपण की गतिविधियां उनके साथ संचालित करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति और साथ में जैसा आपने कहा नवांकुर संस्थाएं, तो नवांकुर योजना के तहत हम नवोदित स्वयंसेवी संस्थाओं के स्ट्रेंथन और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, उनको साथ में लेकर चलते हैं और उनको मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ में जुड़ के कुछ काम करते हैं। तो वो संस्थाएं और प्रस्फुटन समितियां, ये दोनों वो इकाइयां हैं जो इस सारी व्यवस्था को, इस सारे काम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाती हैं। तो निश्चित ही इनकी भूमिका इस सारी व्यवस्था में, इस सारे काम में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप बालाघाट में पिछले कई वर्षों से जन अभियान परिषद के अंतर्गत काम कर रहे हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बालाघाट जिले के अंतर्गत ऐसा कोई नवाचार जो जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया हो और उसके माध्यम से कई लोग सीख ले रहे हो।
जी, जैसे मैं अगर इसी वर्ष की बात करूं तो हमने अंकुर अभियान के तहत, चूंकि मुझे यहाँ जिले के नोडल अधिकारी का भी दायित्व अंकुर अभियान में दिया हुआ है और जन अभियान परिषद का तो काम ही है वृक्षारोपण, लोगों को प्रेरित कर वृक्षारोपण की गतिविधियां कराना, तो पिछले वर्ष हमने 50,000 से अधिक लोगों की भागीदारी के माध्यम से पूरे जिले में पौधे लगाए और मैं पूरे निश्चित होकर कह सकता हूँ कि उसमें से 80% से अधिक पौधे आज भी हमारे जीवित हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लोगों की भागीदारी के साथ लगाए गए थे, वो सिर्फ एक शासकीय व्यवस्था नहीं थी कि पौधा लगा दिया, छोड़ दिया, चले गए, वैसा काम नहीं था, क्योंकि लोगों ने खुद लगाया, उनको पहले मोटिवेट किया गया, उस पौधे के महत्व को बताया गया और उन्होंने किया। तो आज लगभग हमारे 80% से अधिक अंकुर अभियान में लगाए हुए पौधे जो है प्रस्फुटन समितियों ने, समाज ने, नवांकुर संस्थाओं ने लोगों से लगवाए हैं, वो जीवित हैं। एक विषय ये हुआ। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जल संरक्षण, वो भी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का एक काम करने का एक बड़ा विषय है। तो अभी इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो हम 300 से अधिक स्थानीय नदी नालों पर समाज की भागीदारी से बोरी बंधन के काम कर चुके हैं। आज दिनांक अगर मैं बात करूं, अभी चूंकि मध्य प्रदेश में विकास यात्रा संचालित है तो विकास यात्रा में भी मैं जिले का विकास यात्रा का नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी मेरे पास है और अभी उसके तहत हम प्रस्फुटन समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अगर कहीं वृक्षारोपण हो सकता है, ऐसा स्थान जहां हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं, अभी हम विकास यात्रा में पौधारोपण कराकर और समाज को एक संदेश दे रहे हैं प्रस्फुटन समिति के माध्यम से। साथ ही स्थानीय कोई नदी नाला वहां पे अगर हम बोरी बंधन कर सकते हैं तो वो भी काम जो हमारा परिषद का नेटवर्क है जिसमें प्रस्फुटन समितियां हैं, CNCLDP के छात्र हैं, नवांकुर संस्थाएं हैं, ये सब मिलके उन गतिविधियों को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम शासन को ऐसे लोग भी उपलब्ध करा रहे हैं जो भविष्य में ऐसे विषयों की चिंता करेंगे और उस विषय को पूरी मजबूती के साथ समाज में स्थापित करेंगे। तो प्रस्फुटन समितियों का या जन अभियान परिषद का इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अभी तक हुआ है।
सर जी, एक आपसे अंतिम प्रश्न।
जी जी,
जलवायु परिवर्तन के संबंध में आप मोबाइल वाणी के माध्यम से मोबाइल वाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचा जा सके?
जी अतुलगढ़ जी, ऐसा है, मैं तो हमेशा समाज को यही कहता हूँ कि हम अपने प्रयास को समझें कि मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ। अच्छा, पहले यही हुआ है कि लोगों ने हमेशा दूसरों से अपेक्षा करी है और जब भी कभी बात आई है जलवायु परिवर्तन या अन्य विषयों पर काम करने की तो हमेशा यही हुआ है कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को वैसा करना चाहिए, ये बातें यहाँ तक होकर शायद छूट गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पहले करें खुद। अगर हम एक पौधा लगाते हैं और उसको वृक्ष बनने की प्रक्रिया तक लेके जाते हैं तब हम समाज को बताएं कि भाई देखिए ये मैंने पौधा लगाया और आज ये वृक्ष बन रहा है, तब समाज आपकी बात मानता है। क्योंकि आप कहने अकेले से काम नहीं होता, जब आप करके दिखाएंगे तब लोगों को उस पर भरोसा होता है, फिर वो आपका अनुसरण करते हैं। आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 2 वर्षों से निरंतर एक पौधा लगाकर उनके दिन की शुरुआत होती है। पहले उन्होंने इस क्रम को स्वयं शुरू किया, लेकिन अब रोज कोई ना कोई ऐसे संगठन उनके साथ जाकर और पौधारोपण में लगे हुए हैं, पौधारोपण का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक सामाजिक बदलाव के लिए एक बड़ा विषय है कि एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अगर वो एक पौधा लगा सकते हैं तो हो सकता है हम लोग में से कुछ रोज ना लगाएं, किसी हमारे बच्चे के जन्मदिन पर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी श्रद्धांजलि के स्वरूप, ऐसे बहुत सारे अवसर हमारे जीवन में आते हैं कि हम उस दिन एक यादगार के तौर पर भी पौधारोपण कर सकते हैं। तो ये समाज में ऐसे विषय हैं, सिर्फ एक पौधारोपण अकेला ही नहीं ना, हम बिजली कैसे बचाएं, हम ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करें ताकि हम जलवायु परिवर्तन के जो हानिकारक प्रभाव है उससे बच सके, ऐसे छोटे छोटे प्रयास समाज में सभी को मिलकर करने होंगे, तब हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे।
हाँ, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन क्या है और इसे किस तरह बचा जा सकता है इसके ऊपर अपनी महत्वपूर्ण राय दी। मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।
धन्यवाद दिनेश जी, और मेरा यह मानना है कि मोबाइल वाणी एक छिंदवाड़ा जिले से प्रसारित एक ऐसा चैनल है जैसे सामाजिक सरोकार के विषयों को समाज तक पहुँचाने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत मध्य प्रदेश जनवयन परिषद की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका चैनल हमेशा ऐसे ही विषयों को समाज तक पहुंचाने के लिए काम कर सके और उत्तरोत्तर आप वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।